तो चर्चा का विषय है कर्म सिद्धांत, कर्म रहस्य। क्योंकि हमने पहले उधर गए थे ना इंग्लैंड में, तो एक सज्जन आए, आते उन्होंने रास्ते में चर्चा करते आ रहे थे, उन्होंने एक प्रश्न किया, कहते कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई जहाँ तक गुरुद्वारे मंदिर में जाना तो धर्म कर्म के कार्य में भी पीछे नहीं हटे, लेकिन कहते इस उम्र में यह बुरे हाल है। तो वहां की जो समस्या है, उनकी जो समस्या कि लड़के सारे कोई इधर भाग गया कोई उधर भाग गया, कोई पूछता नहीं, घर में अशांति अशांति, कोठी है बड़ी, रुपया पैसा भी है और घर में सब अशांति, कोई सुनता ही नहीं, कोई लड़का उधर भाग गया कोई उधर भाग गया, जैसे उनको बड़ा दुख होता है वहां। तो उनका प्रश्न ये था कि हमने कभी गलत काम नहीं किया, दान पुण्य भी किया, फिर भी ये किस, ये कहां से, ये किस कर्म का फल मिला। तो ये उनका प्रश्न था, और अपने भी यहाँ पर बहुत ऐसे ही प्रश्न होता है, हमने तो इस कर्म, ये काम करने के लिए बहुत जोर लगाया, बहुत मेहनत की, कोई सफलता नहीं मिली, और वो तो देखो जी ऐसे मौज कर रहा है, फटाफट उसका काम हो गया तकरीबन है। और तीसरा एक ये भी प्रश्न आता है, कहते हैं जो ईमानदार लोग हैं सच्चे हैं वो तो तंग होते हैं, और जो उल्टा सीधा काम करने वाले, उसने भी शब्द बोला वो ऐश करते हैं, है ना, ये प्रश्न है ना। तो इन पर विचार करेंगे। थोड़ा मिनट रुक जाते हैं, अभी पीछे आ रहे लोग। गीता का एक शब्द है गहन कर्मणो गति, कर्म की जो गति है चाल है वो बहुत गहन है, नहीं पकड़ में आती। किसी ने, हमने कर्म किया, फिर कर्म की चाल चलती है, है? वो उसके लिए किया, वहां तक वो सारी इंपल्स जाती हैं आती हैं, ऐसे ऐसे करके फिर वो वापस हमें मिल जाती है। कर्म करने, कर्म का जो प्रेरक है वहां से लेकर और उसका फल मिलने तक, वो कर्म की चाल बड़ी गहन है। ये तो अपने लोग तो मानते ही हैं वैसे कि जैसा कर्म उसके अनुरूप ही कर्म, To every action there is an equal and opposite reaction. ये नहीं कि कर्म कुछ और करें और फल कुछ और मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कर्म किया उसका फल मिलेगा ही, एक तो बात ये है, जैसा कर्म उसके अनुसार हमें फल मिलता है, कर्म के अनुसार, हमारी मर्जी के अनुसार नहीं, क्योंकि कर्म का फल भगवान की योजना है, उसका विधान है, उसके अनुसार मिलेगा, और कर्म हम करेंगे अपने मर्जी के अनुसार। तो खैर, कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा, और कोई भी कर्म किया वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, अवश्य मिलेगा उसका फल। अच्छा कर्म है तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म है तो उसका बुरा फल वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अच्छे बुरे का निर्णय अपने जल्दी में नहीं आता है। अब यहाँ पर समस्या एक ये आ जाती है, हम कर्म कुछ करते हैं, करते जाते हैं, और फल कुछ हम और ही जाते हैं, कर्म के अनुरूप नहीं। तकरीबन उन सज्जन का प्रश्न यही था कि हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, मंदिर गुरुद्वारे में भी गए, अब घर पर बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं। हमने कहा सीधी सी बात है जी, आपने धन कमाने के लिए कर्म किया, वो किया, आपको मिला है, आप मंदिर गुरुद्वारे में गए, आपका वहां पर मान हुआ है, है? लेकिन बच्चों के बारे में आपने क्या किया? बच्चों के प्रति आपका जो कर्तव्य था वो आपने पूरा किया या नहीं किया? कहते वो तो हमें ध्यान रहा कि आए थे यहाँ पर, खूब मेहनत में लगे रहे, बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाए। अब बच्चे अपनी मर्जी करते हैं, तो जो कर्म हमने किया ही नहीं उसका फल हम चाहते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता इस कर्म का ये फल है, क्योंकि हम चाहते कर्म तो हम ये करें और फल हमारी मर्जी के अनुसार। थोड़ी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तकरीबन ये आन ही देखने में आता है, बच्चों से लेकर बड़ों को ले गया, बच्चे जब एग्जाम वाले दिन होते ना, वो खूब वो मंदिर में माथा टेक के ऐसे 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 जाएंगे कि हे प्रभु आप पास कर देना। अब पास होने के लिए आपको सही कर्म क्या है? अच्छी पढ़ाई करोगी, बाद में करेंगे, हम ऐसी प्रार्थना करने को गलत नहीं कहते हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि यदि पढ़ेंगे नहीं और फिर भी कहे परमात्मा हमारी मर्जी के अनुसार पढ़ते, हमारी मर्जी के अनुसार हमारे ऐसे ऐसे कर दे, वो तो मुश्किल है भी। अपने करते ही हैं भी ऐसे, कारोबार करना नहीं आता, दुकान चलानी नहीं आती, बिजनेस करने में दिमाग लगता नहीं है, और मंदिर में जाएंगे प्रभु हमारा कारोबार ठीक कर दो, अब ये कैसे होगा अभी, है ना? तो बिजनेस को सही करने के लिए तो वो तरीके आने चाहिए, कैसे ग्राहक से बातचीत करनी है, कैसे ये करना है, कैसे वो करना है, कैसे वो करना। कर्म हम कुछ करते हैं और फल कुछ, कहते प्रभु अब मैं आपका भक्त हूँ, मैंने तो प्रणाम कर दिया, मैंने इतना दान पर कर दिया, अब तुम मेरा काम करो। लगभग यही समस्या है। तो कर्म सिद्धांत तो यही है, जैसा कर्म किया जाता है वैसा फल मिलता है और अवश्य मिलता है। इसके साथ साथ ये भी कई बार आ जाता है कि हमने पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, कारोबार करने में सही तरीके से सब कुछ किया, फिर भी परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा भी कई बार देखने में आता है। वो तो कोई क्या कर्म करता था, उल्टा सीधा बैठा रहता है, तो उसका तो व्यापार फल रहा है, उसको तो दुकान भी नहीं चलानी आती, उसका वो हो रहा है। अब ये प्रश्न आ जाता है, तो वहां पर बात ये है कि अभी हमने कर्म किया और उसका फल तत्काल मिल जाए वो नहीं होता, कभी ऐसा होता ही नहीं है। आपने धरती में बीज डाला, अब बीज को फल तक पहुंचने वृक्ष बनने में समय लगता है। बीज के अनुसार जैसा बीज, किसी किसी बीज को धरती में डाला है और वो फल पकने तक 20 वर्ष लग जाते हैं और कोई साल चीने में कोई दिनों में भी हो जाता है। तो कर्म बीज पर निर्भर करता है कि उसका फसल बो दी है 4-5 महीने 6 महीने लग जाएंगे। अब कहते हैं मैंने तो जी अभी ये वो करके आए हैं, बढ़िया करके आए हैं, वो काम नहीं बना, तो कुछ समय लगता है। लेकिन फिर कहें इतना समय लगता है, ये बात अलग है। लेकिन फिर साथ कहते हैं कि नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है अभी काम किया अभी रिजल्ट मिल गया, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन किस प्रकार, दो तरीके से। एक तो यह कि वो कर्म ही ऐसा था, दूसरा ये है जैसे हमने खेती बो दी है, अगर बीज डाल दिया धरती में तो अंकुरित होगा, यदि खाद पानी मिलता रहेगा फिर वो तना बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, समय लगता ही लगता है। तो उसके बाद दाती वो काट, वो भी तो कर्म ही है ना, वो किया चल हो गया। तो जिसने अभी बीज डाला है तो धीरे 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 बनता है, लेकिन जिसने बीज पहले डाला हुआ था है? और वो फसल पकी तैयार है और उसने दाती चलाई, चलो फल मिल गया, फल तोड़े चलो, तो बीज पहले पड़ा हुआ था, वो काफी हद तक वो सारा तैयार ही था, अपने तो थोड़ा सा कर्म किया चलो फल मिल गया, तो वो काफी लंबा होता है पिछले जन्म, तो वहां वो आ जाता है। हमने कर्म किए थे और कर्म किए और उसके संस्कार है, संस्कारों के अनुसार हमें अगला जन्म मिला, उस जन्म के अनुसार वैसी परिस्थितियां बनी, संयोग बने, मतलब सब तैयार है और थोड़ा सा कर्म किया चलो फल मिल गया, है ना। तो अभी यदि संस्कार है ही नहीं, पिछले कर्म कर्मों का वेग है ही नहीं, और हम उसको देखकर उसे सुनकर हम कहते हम भी विद्वान बन जाए, हम भी धनी बन जाए, हम भी ऐसे हो जाए, तो अभी पीछा वेग नहीं है कर्मों का, तो फिर करते जाओ करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाएगा, समय पाकर उसका भी फल मिल जाएगा। तो जो पहले चला आ रहा था वो कर्म का संस्कारों का वेग, तो उसको तत्संबंधी फल प्राप्त करने के लिए अल्प प्रयास भी काफी, उसको कहते प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध था मिल गया भाई, कोई उत्तम प्रारब्ध है अल्प प्रयास से भी, मंद प्रारब्ध है थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और बड़ी खराब भी प्रारब्ध है तो फिर वो भी फल मिल जाता है, और यदि प्रारब्ध में है ही नहीं तो कर्म व्यर्थ जाएंगे, नहीं व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो बीज डाल रहे हैं, वो नए सिरे से खेती कर रहे हैं तो वो भी मिलेगा। तो भगवान का विधान है कोई भी छोटा सा भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो जो प्रारब्ध कर्म भी हैं, पिछले जन्मों के कर्म संस्कारों के अनुसार जो हमें फल मिलने हैं उनके लिए भी कर्म करना पड़ता ही है, लेकिन पढ़ने की बात नहीं है वहां पर, दर्शन करना पड़ता है ऐसी बात नहीं है, उससे आगे करेंगे, अंदर से प्रेरणा होती है हाँ यही करना है, अंदर से कोई रोकना चाहे भी तो नहीं रोके, हमने तो यही करना है, तो ऐसा फल मिलता है, अच्छा भी मिलता है बुरा भी मिलता है, बुरा फल कोई नहीं चाहता है, लेकिन वेग है, संस्कार है, तो संस्कारों के अनुसार वो कर्म में प्रवृत्त बर्बस जैसे पिछले कर्मों का वेग है, और एक साथ इसके 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 बाद इस कर्म सिद्धांत के बाद साथ में एक बात और भी, अच्छा कर्म भी प्राणी करता है बुरा कर्म भी करता है, अच्छे कर्म का फल अच्छा उसको मिल जाएगा और बुरे कर्म का फल बुरा भी मिल जाएगा। दोनों आपस में वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल नहीं होते करते हैं। और ये भी है दुनिया में, यदि मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ तो जब तक किसी भी कर्म के साथ मैं ऐसा जुड़ा हुआ है तो कोई भी कर्म नहीं है जो बिल्कुल पुण्य पुण्य हो, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो बिल्कुल पाप ही पाप हो। थोड़ा सा जुड़ ही जाता है अच्छा बुरा, अच्छे कांश ज्यादा है गलत कांश थोड़ा है, तो कोई भी कर्म करेंगे अच्छा बुरा हो ही जाना। जैसे वो धन कमाते रहे सब को, कोई बुरा नहीं करो पूरा नहीं, लेकिन वो बच्चों को ध्यान दे ही नहीं पाए। एक काम करते करते थोड़ा सा काम दूसरा बिगाड़ लेते हैं तो ये अच्छा बुरा हो गया। तो जैसा कर्म वैसा फल मिलता ही मिलता है। इसके साथ एक दो तीन बातें ये कहने की जरूरी है। तकरीबन कही जाता मैंने तो सारी उम्र कोई गलत काम नहीं किया, अब फिर भी पता नहीं कहां से ये ऐसा आ गया। पहली बात तो यह कि पता ही नहीं लगता कहां से गलत काम हो जाता है, और तो पिछले वो तो याद ही नहीं है। पिछले जन्म का जो कर्म संस्कारों का जो वेग है वो बहुत महत्व का है। याद है सर, कर्म जाल जैसा चलता रहता है। पिछले जन्म क्या और किसने जन्म कर्म संस्कार हैं, और फिर आखिरी समय में मृत्यु के समय में एक तूफान जैसा उठता है शरीर के अंदर, और एक लीडिंग कर्म जो है वो लीड करता हुआ, और बाकी वो कर्मों की जो चेन संस्कार उससे जुड़े हैं उसके अनुसार वो जो अंतःकरण में संचित कर्म है, संचित कर्म होता है ना, प्रारब्ध कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है, क्रियमान कर्म होता है। तो हमारे अंतःकरण में बहुत सब जितने जितने जब जन्मों में सब कर्मों का संस्कार है, कोई नष्ट नहीं हुआ है। आप भोग हो गया तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी संस्कार रह जाते हैं। तो आखिरी समय में वो जो उस जन्म का या पिछले से संबंधित एक जो संस्कार जो बहुत ज्यादा प्रबल था वो उठा, और उससे संबंधित जैसे कई मालाएं पड़ी हैं, ये ऐसे कई मालाएं पड़ी हैं। हमने एक मन का उठाया, एक मन का उठाया तो उससे जुड़ी हुई वो सारी माला उठी है। तो आखिरी जो मृत्यु के समय जो प्रबल कर्म था वो जो जागृत हुआ है उससे संबंधित एक चेन होती कर्म संस्कार, तो वो जब वो शरीर छोड़ता है उसके अनुसार फिर उसको अगला शरीर मिलता है। तो आखिरी जन्म में जो कर्म उसके अनुसार उसको अगला शरीर मिला, और शरीर मिलने का मतलब क्या है, शरीर मिलने का मतलब है ये प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध मतलब पिछले जो जन्मों के कर्म संचित जो हैं उनका एक हिस्सा वो निकल गया, वो जो कर्म संस्कार जिनका अब इस जन्म में भुगतान होना है उनको कहते प्रारब्ध कर्म, बाकी संचित रह जाते हैं, वो संस्कार बनते रहते हैं। खैर, तो वो सारे जो प्रारब्ध कर्म जिनका भुगतान इस जन्म में इस शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक होना है वो एक प्रकार से निर्णित ही होता। हाँ, प्रारब्ध कर्म का भुगतान। अब ये तो बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाना चाहिए, कैसे स्त्री शरीर है कि पुरुष शरीर है जन्म से निर्णय हो गया। अब दोनों के देखो सारा चिंतन जीवन कर्म है ना, फर्क पड़ गया ना। अब स्त्री चाहकर भी पुरुष जैसा वैसा व्यक्तित्व वैसा चिंतन आजकल का मुकाबला चल रहा है, लेकिन शरीर तो शरीर ही है, बड़ा फर्क रहता है। तो जन्म से ही वो एक धारा है, स्त्री कर्म संस्कार पुरुष वो निर्णित हो गया। फिर माता पिता हैं, उनके अनुसार वो शरीर मिला है अपने कर्मानुसार, उस परिवार में गए। कोई स्वस्थ शरीर है, कोई रोगी शरीर है, बचपन से निर्णय है। आजकल तो है ना डीएनए, वो क्या था ना, वो कहते सारे भी पिछले माता पिता को, तो वो भी सब निर्णय हो गया। फिर दिमाग का भी देखो, पता लगता है बचपन से, बच्चा ये अच्छा समझदार है, ये बड़ा शरारती है, ये तो बहुत मोटा दिमाग है, इसकी कोई समझ में नहीं आता। और जैसा बचपन से निर्णय हो गया है, वो स्वभाव है, वो प्रकृति है, सारी उम्र लगती है। आपको विश्वामित्र हो जो क्षात्र स्वभाव के, और इतना तप किया कि एक ही जन्म में ब्राह्मणत्व तो पैदा कर लिया, नहीं तो सारा उम्र उन्हीं संस्कारों को लेकर। कौन से संस्कार? जो पिछले कर्म अनुसार बचपन में ही इस शरीर में मिले, उनके अनुसार वो आखिर तक उसका चिंतन है, चिंतन के अनुसार कर्म है, शरीर है। कोई जन्म से ही धनपति, कोई जन्म से ही कंगला हो गया है, कोई यहाँ जन्मा है, कोई वो अमेरिका में जन्मा हुआ है, सारा समाज सारी संस्कृति इधर, अपने जन्म में हिंदू होंगे कहते हैं ये, अपने अगले जन्म में पता नहीं मुसलमान होंगे कहते, सब उल्टा हो गया। तो सारी सोच है ना, तो बहुत कुछ निर्णय तकरीबन कहेंगे ये सारा जन्म से। और जन्म का मतलब क्या है? पिछले कर्म, कर्मानुसार ही भुगतान प्रारब्ध। तो हम ये बात कह रहे हैं, कोई भी कर्म वो उसका फल मिलेगा, और वैसे ही मिलेगा जैसा हमने कर्म किया है। तो इसके आधार पर निर्णय कर लेते हैं, ये स्वास्थ्य है, धन है, मान है, ये है, वो है, ऐसे। हाँ, यहाँ पर हम एक बात ये बिल्कुल बार बार कह रहे हैं कि प्राणी जो प्रारब्ध कर्मों का भुगतान जिसका होता है, वो भुगतान करने के लिए भी उसको कर्म करना ही पड़ता है, जरूर करना। इतना नहीं आकाश ऐसे फल सब करेगा, अनजाने गलत काम कर लेता है। क्योंकि वो आता ना लखनऊ वालों का, वो पिंकी कई लोग जानते होंगे, लखनऊ से है, उसकी भाभी थी पिंकी, वो लड़की भी थी, उसका भाई था, उसकी माता भी थी। तो कहीं से घूम फिर के आ रहे थे, कहाँ था रास्ते में, हाँ गाड़ी बदल दी थी उन्होंने, ट्रेन चेंज करनी थी। तो जैसे इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1, इधर से सीढ़ियाँ जाती हैं, फिर तीसरे प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ट्रेन चेंज करनी थी। तो उसका तब पिंकी का शरीर भारी करते, मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के इधर जाऊंगी। तो उसके भाभी कहने, नहीं ये सीधे ही चलते हैं इधर से, यही बस दो लाइनें पार करनी, इधर करने चलनी है। तो लोग कहते थे मैं तो चल नहीं सकती, फिर कहते ट्रेन तो आ रही है, बिल्कुल टाइम हो गया है, गाड़ी का जो फर्स्ट नंबर पर आनी है वो तो बिल्कुल आ जाएगी, सीधे चलो। नहीं कहते, मैंने तो इधर ही जाना है, और गाड़ी आना शुरू हो गई। सब कहते नहीं इधर से चल, नहीं मैंने तो इधर से सीधे ही जाना है। सब लोगों ने मना किया, मुसाफिर कहते भी ट्रेन आ रही, कहते अभी जाऊंगी। अब गाक बस वहीं पर खत्म हो गया। अब वो कौन ले जा रहा है उसको? वो है काल वायु, प्रारब्ध वायु है, और उसको दिखाई नहीं देता, सूझता नहीं, सामने ट्रेन आ रही है। तो इस प्रकार जो प्रबल कर्म होते हैं, जिनका भुगतान होना ही होना होता है, वो कहते मति मारी जाती है, ये तो मंद कर्मों का है। इसी प्रकार जो शुभ कर्म होते हैं, सहज अंदर से प्रेरणा होती है, यही होना है, यही करना है, वैसे संयोग बन जाते हैं। तो चाहे किसी भी कर्म का भुगतान होना हो, उसके लिए कर्म बन जाता है, कर्म करना ही होता है, संयोग बन जाते हैं, वातावरण बन जाता है। अब इसके साथ साथ एक बात खास जो मनुष्य के लिए है, कर्मों का भुगतान तो इसको होना ही, उसके अनुसार कर्म करने ही करने हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये मनुष्य है, ये कर्म करने में, अच्छे कर्म करने में स्वतंत्र भी है, ये अधिकार है मनुष्य शरीर में। कर्मण्ये कर्मण्ये अधिकारस्ते, तुझे कर्म करने का अधिकार है, भगवान कहते हैं। अधिकार का मतलब अंदर योग्यता छिपी हुई है, इसको प्रकट करो। तो यहाँ पर आ जाता है मनुष्य का धर्म, मनुष्य का प्रारब्ध कर्म का भुगतान भी हो, करना ही पड़ेगा भी, लेकिन साथ ही साथ इस ढंग से वो कर्मों का भुगतान करे कि यदि मंद कर्म वो फल मिल रहा है, उसका भुगतान करते करते कोई और ही मंद कर्म और ही जाल ना बना ले, उससे निकलने का उपाय करे। और ये समस्या बड़ी प्रबल है, जो कुछ हमारे लिए गलत हुआ, बुरा हुआ, तो यदि हम आस्तिक हैं, भगवान की सत्ता में विश्वास रखते हैं, तो मेरे कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का फल है, लेकिन वो कर्मों का भुगतान करने के लिए मुझे कर्म करना ही पड़ेगा, वो कर्म करते करते कहीं और फिर और गलत काम न, मंद कर्मों का भुगतान करने के लिए हम और नए नए गलत काम कर लेते। कैसे, यहाँ तक भी है, कैसे, वो कौन से कर्म है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, दोष लगाना शुरू करेंगे, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, भगवान भी अब तो नहीं सुनता, ये मिथ्या दोष है। और क्या दोष, अमुक वृत्ति के कारण ये गलत काम हुआ, तो उसे गैर ठान लेना, ये बहुत गलत काम हो जाता, ये गलत कर्म है। तो पहले तो गैर के कारण, पिछले जन्म में संस्कार के कारण ये परिणाम है, और फिर हमने उसका भुगतान करते करते नया उल्टा और कर्म बना, फिर ये चकचेन चलती रहती है ना। तो ये मनुष्य शरीर में हमने सीखना है, ये पुरुषार्थ। कोई भी कर्म ऐसा नहीं, पहले कह चुके हैं, जो बिल्कुल ही पुण्य पुण्य मनुष्य शरीर मिला है तो मिश्रित कर्मों का ही फल है, पाप पुण्य ये मिश्रित कर्मों का ही फल है, तो सुख भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे, अभाव भी होगा, स्वस्थता भी होगी, रोग भी होगा, और भी संपन्नता भी होगी। लेकिन जब दुख आता है, कष्ट आते हैं, तो हम किसी न किसी को दोष लगाना शुरू कर देते, दोष नहीं लगाते खाली, उसे फिर व्यर्थ ठानना शुरू कर देंगे। तो इससे यदि बच सकते हैं, यही बचना, यही मनुष्य का धर्म है, यही सही कर्म है। ये थोड़ी सी लाइन है ना, ऐसा नहीं है कि अपना बचाव नहीं करना, यदि कष्ट हो रहा है, ये हो रहा है, बचाव करो, उपाय करो, लेकिन इस ढंग से करो कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, और भगवान की ये योजना है कि भुगतान हो रहा है, मेरे कर्मों का भुगतान, तो इस तरह प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे शक्ति दो, मेरे कर्मों का भुगतान हो जाए। और यदि दोष लगाना शुरू कर, भुगतान तो हो ही जाना है भाई, कर्म का भुगतान तो हो ही जाना है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा शुभ कर्म कर लो भाई कि आगे से हमारा हृदय और ज्यादा सात्विक होना शुरू हो जाए, क्रोध लोभ मोह संस्कार कम होने शुरू हो जाए। यदि इसके स्थान पर हमने दोष लगाना शुरू कर दिया, वो कर दिया, मेरा गलत कर्म, पाप कर्म कर रहे हैं, वैसे थोड़े लोग हैं जो विचारशील हैं, जो ये कहते कि नहीं किसी को दोष नहीं। गुरबाणी में पंक्ति आती ना, दोष कर्म अपना क्या आता ना, दद्दा दोष न दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बस यही है। हाँ तो ये संतों की वाणी गुरबाणी शास्त्र में यही है। रामायण में भी आता है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेशा, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोका, अहम करोमि इति वृथाभिमाना। कि सुख या दुख जो जो संसार में ऊंचा नीचा ऐसा होता है, इसका देने वाला कोई दूसरा नहीं है। यदि कोई कहता है कि दूसरा ऐसा, तो ये कुबुद्धि बुद्धि नहीं है, ये तो मूढ़मती है, उल्टी मती है। अपने कर्म जाल में प्राणी उलझा जैसा है और वो चल रहा है, मैं कर्म करूंगा, ये करूंगा, ये कर्म जाल है, ये वृथाभिमान है, इससे मुक्त हो जाए तो ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा हमने ये व्यवहारिक ऐसे बातें कही, ऐसे कही, ऐसे कही, जो बाहर से धन का लाभ हुआ, हानि हुई, मान मिला, अपमान मिला, तो सीधा ही दोष लगा देते हैं, उसने ऐसा किया। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं, वो भी प्रारब्ध कर्मानुसार ही मिलती हैं, जैसे शारीरिक रोग है, बचपन से किसी को हो गया है, किसी को बड़ी उम्र में हो गया है, कभी वो भी हो गया है, तो ये भी कर्मों का ही फल होता है। इसमें किसको दोष लगाएंगे, दूसरे को तो नहीं। वो कह रहे डॉक्टर ने ऑपरेशन गलत किया था, वो बात दवाई गलत देती, यहाँ भी लगाना तो वहां भी वो कर देंगे, तो वो भी होता अपने कर्मों के अनुसार ही है। लेकिन वहां थोड़ी सी एक थोड़ी सी बात और भी है, यदि हम किसी का धन मान ऐसे ऐसे है, तो दूसरों के प्रति हमने वैसा कर्म किया था, उसका फल मिला अच्छा बुरा। लेकिन जब शरीर में ऐसा रोग आ जाए, वो रोग आ जाए, तो हमने वहां भी गड़बड़ की है, अपने प्रति की है, अपने आप में गड़बड़ कर ली है। वो गड़बड़ क्या है, वो थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि ऐसे तो गीता में भी कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, जन्म का जो कष्ट है, मृत्यु है, तो वृद्धावस्था है, रोग है। अगर तो बड़े बड़े संतों को भी रोग हो जाते हैं, वृद्धावस्था, इससे तो कोई बचता जल्दी है ही नहीं। तो ये किन कर्मों का फल है, कर्म का फल तो ये भी है ही है। तो इस चर्चा में हम कहेंगे, सबसे बड़ा जो ऐसा कर्म है जिसका फल रोग है, जिसका फल वृद्धावस्था है, जिसका फल मृत्यु भी है, तो वो भी कर्म ही है। हाँ, उसमें थोड़ी सी ईश्वर का योजना भी मिली हुई है, किसमें, मृत्यु में, जन्म में और वृद्धावस्था में, वो तो कुछ ईश्वर की योजना भी है। लेकिन उसकी योजना से हम थोड़ा सा और अपना भी कारोबार बढ़ा लेते हैं। भगवान की योजना तो इतनी ही थी कि चलो जन्म मिलेगा, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे से वृद्धावस्था होगी, उसके बाद फिर शरीर छूट जाएगा, चलो फिर, भगवान ने तो इतनी योजना बनाई थी। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधियां, लेकिन व्याधि के संस्कार थोड़े थोड़े वृद्धावस्था में भी आते हैं, लेकिन हम भगवान की इस योजना में अपनी मन मर्जी से बहुत कुछ जोड़ देते हैं, अपनी मन मर्जी से, तो रोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा भी कई बार बढ़ जाते हैं। वो क्या है, सब का जो मृत्यु कह लें, वो कह लें, उसका मूल कारण तो ये कि परमात्मा से हम जुदा हुए, अज्ञान के कारण। नहीं तो परमात्मा में तो कोई रोग नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा रूप ही है, ऐसे सारे शास्त्र कह रहे हैं, तो परमात्मा को कोई रोग रूप कुछ नहीं होता। लेकिन अपने यदि है शरीर, शरीर की प्रकृति ही ऐसी है कि वृद्धावस्था मृत्यु आनी आनी ही है, तो उसमें कारण क्या है कि हम परमात्मा के अंश होते हुए भी परमात्मा की ओर पीठ किए हुए हैं, भूले हुए हैं कि मैं वही हूँ। तो ये तो मूल कारण है। मूल कारण का फल क्या हुआ और क्या हुआ, वो ईश्वरीय योजना के अनुसार है कि हमें स्थूल शरीर मिला, मृत्यु लोक में जन्म मिला। जब शरीर मिला है तो वृद्धावस्था, क्योंकि जो पार्थिव शरीर है इसकी, इसमें तो बूढ़ा होना ही होना है, रोग भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम अपनी ओर से जोड़ देते हैं। वो रोग का जो चक्कर, रोगों का जो चक्कर है, वो हमारे ज्ञान का ही फैलाव है। वो कैसे आता है, मैं ये शरीर हूँ, परमात्मा को भूला हुआ हूँ, इतना ही मैं शरीर हूँ, तो हमारे मन के अंदर भी वो अज्ञान का पसारा, राग द्वेष सारे बन गए, काम क्रोध लोभ मोह, ये थोड़ा सा वहां से बढ़ना शुरू होता है। पिछले जन्मों में यदि ज्ञानी को भी शरीर में रोग हुआ है, तो शरीर तो पिछले जन्मों के संस्कार अनुसार मिला था ना, तो पिछले जन्म में थे भी, इसके कारण को शरीर ऐसा मिल गया है। चलो थोड़ा थोड़ा तो चल जाएगा, चलो वृद्धावस्था आनी है तो थोड़े मोटे आ भी जाए। यदि बिल्कुल कोई रोग नहीं आए और वृद्धावस्था ही हो, इसका मतलब है वो सचमुच परमात्मा का प्यारा है। थोड़े हैं, वे भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 100 साल इतने तक जिए और शरीर में कोई रोग नहीं, तो अच्छे कर्म का फल है। लेकिन रोग भी आ जाते हैं तो वो कैसे आते हैं, उनका कारण है क्रोध लोभ मोह, ये अज्ञान के साथ जुड़े हुए वासना इच्छाएं, और वासनाएं इच्छाएं लोभ आदि के कारण फिर हमारा प्राण जो मन है वो बाहर भागता है, ज्यादा खाओ, ज्यादा सुख के पीछे भागो, ये सुख इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, तो इंद्रिय चित्रों से प्राण शक्ति बाहर विषयों में फंसती फंसती फंसती, वो प्राण शक्ति दुर्बल हो जाती है। तो प्राण शक्ति जब कमजोर पड़ गई है तो शरीर तो उसके सहारे से चलना है। एक तो प्राण शक्ति दुर्बल हो गई किस कारण, क्रोध लोभ मोह के कारण, और दूसरा क्या हुआ, ज्यादा सुख की खोज में ज्यादा खाए हैं वो कर रहे हैं, तो स्थूल शरीर में भी गड़बड़ी हो गई, पेट खराब हो गया, ज्यादा सुख का भोग कर विषयों के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, या फिर प्रमाद भी कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। हाँ, अलग मतलब साथ ही जोड़ भी सकते हैं, धन के पीछे पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, पड़े हुए शरीर को खत्म, न खाने का समय, न सोने का समय, न ये समय, न वो समय। तो वो कह रहे थे, कहते जो भारतीय लोग उधर आते हैं, कहते 40 साल के बाद सबके शरीर खराब हो जाते हैं, कहते पैसा कमाने में लगे हुए, पैसा कमाने में लगे हुए, ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गलत खान पान, ज्यादा स्ट्रेन से कर्म करना, और इसके साथ साथ इतना ही नहीं है, इसके मूल में तो वो है क्रोध लोग, इसके कारण शरीर रोगी हुआ। और वो जो रोग के संस्कार, हाँ रोग का तो भुगतान हो गया, शरीर में रोग प्रकट हुआ और जो खत्म हो गया शरीर, मृत्यु हो गया, खत्म हो गया, लेकिन संस्कार है जो है, संस्कार साथ में जाते हैं ना, हम चर्चा कर रहे हैं, मान लिए पिछले जन्म की, पिछले जन्म में ऐसे ऐसे किया, वो किया वो किया, रोग का कारण क्या, रोग का कारण वृद्धावस्था, चलो छोड़ दें, क्रोध लोभ मोह संस्कार और प्राणों की बहिर्मुखी गति और विश्व में ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो उसके कारण शरीर रोगी हुआ और वो शरीर छूट गया, कर्म का भुगतान हो गया, लेकिन उसके बाद अगला जो शरीर मिलता है उस शरीर में प्रवेश करने वाला जो जीव है उसके साथ क्या क्या जाता है? उन्होंने को जाएगा, प्राण को जाएगा, इंद्रियां जाएंगी, सारी जाएंगी। तो सारा जार खाली स्थूल शरीर में जो रोग का प्राकट्य पैदा हुआ था वो तो खत्म हुआ, वो तो भुगतान हो गया है। बाकी सारा रोग की जो बीज हैं, जड़ हैं, वो अगले जन्म में। और यदि बहुत तीव्र वेग था कहां प्राणों तक में बहिर्मुखता का, प्राण में कुछ शरीर छूटने के बाद जाता है सबका, सारे स्थूल शरीर ही पीछे रह गया है, तो वो बहिर्मुखता का रोग के संस्कार जो प्राण में कोष में भी बड़ी प्रबल थे किसी भी कारण से थे, तो वो साथ जाएंगे। तो इसी कारण कोई बचपन से भी रोगी है, वो शरीर तो मिल गया हाँ, लेकिन वो प्राण में कोष पूरा विकसित नहीं है। रोग के कई कारण हो सकते हैं। यदि वो रोग का कारण पिछले जन्म अनुसार जो बीज डाला हुआ था वो हमारे मन में भी है, और मन में नहीं प्राणों तक में है, प्राणों में नहीं इंद्रियों में है, ज्ञान इंद्रियों में है, ज्ञान इंद्रियों में नहीं कर्म इंद्रियों तक भी है, किसी को मार काट के ये किया वो किया, तो जो कर्म इंद्रियों तक जो इस प्रकार के उल्टे कर्मों का प्रवेश ऐसा हुआ है, तो कर्म इंद्रियों शरीर फिर रोगी बनता है, तो वो भी पिछले कर्मों के अनुसार है। हाँ, उसका भुगतान कैसे करना है ये बात अलग है, भुगतान तो हो ही जाएगा। यदि वो रोग के संस्कार इतना है कि इतना करके भुगतान हो जाएगा, रोग भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि रोग को दूर करते करते फिर मन में और क्रोध लोभ मोह है, परमात्मा ने क्या कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये नहीं करे। हाँ, बस वो गड़बड़ ना हो कि नहीं चेन, चलो मेरे कर्म, यदि रोग भी आया है तो मेरे कर्मों का ही फल आया है। हाँ, धन मान विषयों की तो बात सामने आ जाती है ना, शारीरिक रोगों की बात भी नहीं है, तो भुगतान करें और फिर शांत मन से करें, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए करें। यहाँ तक तो एक चैप्टर पूरा हुआ, अब अगली बात करते हैं। इसके साथ साथ ये जो बात हुई है ये तो है कर्म की, जब तक मैं करता हूँ तब तक सुख दुख मिलने मिलने हैं, धन मान हानि लाभ आदि होना ही होना है, लेकिन इसके ऊपर एक परमेश्वरी शक्ति भी है, तो उसकी कृपा भी कई बार हो सकती है। कर्म के साथ साथ कृपा का भी यदि मेल हो जाए, भगवान की कृपा, तो वहां पर जब कृपा भी, कृपा शक्ति को भी कोई धारण कर सके, कोई ग्रहण कर सके, तो इस प्रकार के जो प्रारब्ध के कारण या रोग ऐसे कारण कहीं पर कोई बहुत जैसा तनाव है, दुख है, कष्ट है, तो उसमें कमी आ सकती है। अब ये थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म इस वास्ते है कि हम चाहते हैं प्रभु कृपा करो, खूब प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम प्राप्त नहीं होता। तो वहां पर दो बातें होती है, एक तो बात है कि हमने प्रार्थना सही ढंग से की नहीं, दूसरी बात ये होती है कि वो जो कर्म के जो ऐसे रोग आदि या धन मान ऐसे ऐसे जो कारण थे वो बहुत प्रबल है, बिल्कुल तो खत्म नहीं होगा, जब तक ये शरीर है बिल्कुल ही बिना भुगतान करे खत्म हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सहन करने की शक्ति मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो कष्ट नहीं महसूस होगा, ये तो हो सकता है कि बिल्कुल खत्म ही हो जाए, ये तो नहीं, कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो तभी संभव, शरीर ही नया बन जाए, तो वो भी एक प्रसंग है जब प्रारब्ध को भी जीतने वाले हैं। तो प्रारब्ध को जीतने का मतलब होता है कि शरीर का ही रूपांतरण हो जाए, वो तो कोई विरल ही करेगा। लेकिन इतना हो सकता है कि जो प्रारब्ध जन्य कष्ट है उसको सहन करने की शक्ति मिल जाएगी और वो जल्दी निपटारा हो जाएगा। तो प्रश्न यही है कि वो कृपा को ग्रहण कैसे किया जाए। पहले कह चुके हैं कई बार प्रार्थना ही कह रहे हैं, प्रभु कहाँ से, कहाँ, मैंने तो ये किया नहीं, वो किया नहीं, तो पता नहीं कहाँ से आ गया, तू ही संभालो। ये नहीं प्रार्थना है, इसको प्रार्थना नहीं कहते हैं। हम तो एक तो परमात्मा को दोष लगा रहे हैं, फिर कहते प्रभु तू कृपा भी कर दे। कृपा तभी होती है यदि हम कर्म के रहस्य को समझ लें, क्योंकि कृपा प्राप्त करना भी एक कर्म है, कृपा प्राप्त करना भी एक साधना है। इसको कर्म नाम जगह हम साधना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए पहली शर्त तो यही है कि जिस कर्म के कारण धन हानि हुई, ये हुई, ये हुई, राग द्वेष शरीर में रोग हुआ, तो ऐसा कर्म नहीं करें। सीधा साधन, मैंने डायबिटिक है, अब प्रार्थना कर रहे हैं मेरी डायबिटिक ठीक हो, रहे मीठा खा रहे हैं, तो क्या कृपा होगी? नहीं हो सकती भाई। सीधे प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अब आप कृपा भी करो। तो कृपा प्राप्त करने के लिए जो भी कर्म हम कहें, पहले कर्म करने में बिल्कुल निर्दोष, जिन शरीर में रोग है, अब प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु रोग दूर कर लो, और साथ ही शरीर को रोगी बनाने वाले कर्म भी करते चले जाएं, तो फिर कृपा क्या होगी? हैं, तो जिन कर्मों के कारण शरीर में रोग आदि पैदा होते हैं उनसे बिल्कुल बचें और फिर कृपा की प्रार्थना भी करें, तो फिर रोग सहने की शक्ति मिलेगी, और रोग सहने की शक्ति मिल गई है तो कहा जाएगा रोग भी दूर हो गया। अब ये तो बात समझ में आ गई ना कि कर्म उल्टा नहीं करना है। ये भी वैसे दिमाग में आ जाए लेकिन हो जाता है ना, फिर कहते ये तो कर्म संस्कार प्रबल ही थे। अब दूसरी बात कर रहे हैं, अब कृपा को कैसे ग्रहण करना है। सीधी कहने से नहीं बात, प्रार्थना करने की बात नहीं है। तो बार बार कह रहे हैं उत्तम कर्म करें, निर्दोष कर्म करें, सात्विक कर्म करें, और किसी को दोष ना लगाते हुए कर्म करें, और उसके बाद फिर वो कृपा शक्ति से जुड़ने की साधना करें। तो साधना एक सरल सीधा साधा उपाय है, प्रार्थना करें। बहुत ऐसे केस हुए हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बिल्कुल कोई जवाब दे दिया, और कृपा उसके बाद ही हुई। क्यों? पहले भी तो हो सकती थी। नहीं नहीं, पहले नहीं हुई, क्योंकि परमात्मा पर विश्वास ही नहीं था। इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, इधर भाग रहे, जब सब ओर से हार गए, थक गए, टूट गए, अब कहते जी अब तो तेरी है। और कई बार ऐसा अंदर इतना गई 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 रो खत्म। हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टरों के पास नहीं जाओ, हम ये कह रहे हैं कि विश्वास परमात्मा पर कम होता है और डॉक्टर पर ज्यादा होता है, ये कह रहे हैं। ये थोड़ी सी लाइन है, है? बिल्कुल नहीं कह रहे खाली दवाइयां छोड़ के मंदिर में बैठे ध्यान करो, ये नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ यही कह रहे हैं जो डॉक्टर कहेगा वो ब्रह्म वाक्य, जो शास्त्र कह रहे वो कह रहे हैं, चलो कोई नहीं, बहुत कर लिया, छोड़ दो। अब सूर्य साधना की बात आती है, वो साधना बात हमने की थी एक महीना, कुछ नहीं हुआ, और डॉक्टर की दवाई 20 साल से चल रही है। एक डॉक्टर बदला, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा डॉक्टर बदला, वहां क्योंकि विश्वास पक्का है। लेकिन साधना, क्योंकि कृपा प्राप्त करने के लिए एक ईश्वर से, ईश्वरी शक्ति स्रोत के साथ संबंध जोड़ना होता है। प्रार्थना होती है, बहुत काम करती है, लेकिन वो तो आखिरी टाइम पर होता है। तो इससे पहले भी तरीके हैं उसके लिए साधना होती है। बहुत से तरीके, लेकिन साधना के द्वारा क्या होगा, हमारे अंदर शरीर के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए अपने शरीर के अंदर जो परमात्मा की शक्ति स्रोत का जो दरवाजा है उसके साथ संबंध जोड़ना है तो कृपा होती है जी। इसके लिए सीधे साधे हैं, मन बाहर है भगवान के अर्पण करो जी, श्वास बाहर है, रोग का मतलब है श्वास बहिर्मुखी है तो श्वास को अंदर करो, मन बहिर्मुखी है जाप करो, मृत्युंजय मंत्र है ये जाप करो, उसके अर्थ को सुनो और साथ साथ श्वास को अंदर ले जाओ और धीरे धीरे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मान लीजिए रोग के संस्कार बहुत प्रबल थे तो टाइम लग सकता है भाई, मन अंदर जाएगा धीरे धीरे लेकिन मन शांत तो हो जाएगा ना भाई, बारिश हो रही हो ऊपर छाता तो मिल जाएगा, जीवेंगे तो नहीं, बारिश हो रही है सब कुछ हो रहा है लेकिन कष्ट की प्रतीति कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से निरंतर वो साधना करते जाए, और साथ में हम कह चुके हैं कि ऐसा कर्म नहीं करना जिसके कारण रोग को या ऐसे ऐसे मंद कर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसमें खान पान भी आ जाएगा, प्रमाद भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, तो वो कृपा प्राप्त करना भी एक कर्म ही होता है। और आखिरी बात हमने शुरू में कह दी कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा, मेरी जगह दूसरा कोई कर्म कर दे ऐसा नहीं होता है। जैसे अनुष्ठानों की बात आती ना तो हम कहते भी मृत्युंजय मंत्र करना आप ही करो, किसी से नहीं करवाओ। हाँ किसी ने कर दिया है मन में श्रद्धा हो जाएगी, कितना फल मिल जाएगा उसके अनुसार फल में, आप पुराने युगों में या कुछ ऐसे आजकल भी होंगे ऐसे सात्विक तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, जो कर्म करते थे अनुष्ठान करते थे और संकल्प के द्वारा वहां तक यजमान तक पहुंचा देते थे और वो श्रद्धा के द्वारा ग्रहण करता था, वो तो ठीक था। लेकिन आज तो वो अनुष्ठान करने वाले भी पैसा लेकर कह रहे थे अपना तो हो जाएगा उसका हो ना, तो वो अभी क्या होगा, तो सीधा खुद ही करो भाई, खुद ही करो, क्योंकि खुद करेंगे तो मंत्र का उच्चारण करें साधना करें तो दिमाग में वो जाएंगे जाएंगे जाएंगे, वो लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी श्रद्धा भी हो विधि भी सही हो, तो वो भी एक प्रकार से कर्म ही है, वो कृपा रूप कर्म है, वो नवीन कर्म है, पुरुषार्थ है, वो सही पुरुषार्थ है। तो करते चले जाओ, शुभ कर्म करें, किसी का कोई गलत ना करें, अपने कर्मों का जो कुछ मिल रहा है मेरे कर्मों का फल है उसको भुगतान करते चले जाएं, तो पिछले कर्मों का भुगतान तो हो ही जाने जा शरीर तक ही है, पहले हो जाता है, फिर और कर्म श्रृंखला चलती रहती है और फिर नए कर्म बन जाएंगे, और हो सकता है इसी जन्म में परमात्मा से मिलन भी हो जाए, प्राप्त का भुगतान भी हो जाए, फिर तो थोड़ी बहुत अगले जन्म में से कसर पूरी हो जाएगी। तो बात यह है कर्म करें कर्म करें, कृपा को प्राप्त करने के लिए कर्म जो साधना, और कर्मों का भुगतान करने के लिए कर्म। हमारा ख्याल काफी चर्चा हो गया, हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
अब ये अगले जन्म में भी फिर साधना करनी है या अगला जन्म पूछना है तो उसमें फिर गुरु सेम ही रहते हैं जी या बदल जाते हैं?
गुरु तो सेम ही है, परमात्मा के अलावा और कौन गुरु है? देखो एक बात, हाँ वो फिक्र ये है कि शरीर गुरु होता ही नहीं है। हम मोटी मोटी भाषा में कहें, जैसे मान लेकर ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा से जुड़ा हुआ है ना, मान लीजिए वो शरीर उसका समाप्त हो गया लेकिन वो शिष्य की अभी साधना पूरी नहीं हुई है और वो अगले जन्म में उसी, मतलब गुरु का मतलब और भी परंपरा है, साधन धारा है, ज्ञान परंपरा, योग परंपरा, भक्ति परंपरा या सभी परंपराओं का मिश्रण है, सबका मूल तो परमात्मा ही है। तो अगले जन्म में वही परंपरा में हम प्रवेश होंगे, इस ढंग से वही गुरु है। एक प्रसंग में हमें कई बार बात याद आती है, तो कई बहुत ज्यादा सुनने में आया कि वो स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया है ना, आपने सुना ना, वो विवेकानंद का जन्म हुआ है इस जन्म में। लोग कहते हैं परमहंस रामकृष्ण ने उस जन्म में, पहले परमहंस रामकृष्ण का इस जन्म में मैंने ये जन्म लिया है। हमने कैसे बढ़ के मूर्खता तो हो नहीं सकती। विवेक नहीं, विवेकानंद ने कभी नहीं कहा मैं विवेकानंद था, विवेकानंद हूँ। रामकृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं रामकृष्ण हूँ। तो रामकृष्ण का जन्म कैसे हो गया? वो नाम पॉपुलर हो जाते हैं अपने आप से, हैं? नहीं नहीं नहीं, ना ना वो विवेकानंद थे ना नरेंद्र थे, वो तो आत्म तत्व हैं। यदि वो वहां पर अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो आत्मात्मा का जन्म क्या? और यदि मान लीजिए वो मुक्त नहीं हुए थे, तो विवेकानंद खत्म हो गया तो भी विवेकानंद नहीं रहा। यदि मुक्त हो गया तो भी विवेकानंद नहीं है, यदि जन्म हुआ तो अगली आगे चला गया, आगे चला गया है। तो गुरु भी ऐसे ही है, वो नहीं ये नहीं
परंपरा जो है इसको
कैसी साईं बाबा की?
साईं बाबा
देखो, यदि कोई ऐसा कहते हैं वो किसी परंपरा को लेकर ऐसा हो सकता है, लेकिन शिरडी साईं बाबा वो खत्म हो गए। अब ऐसे वो कहते वो भी जिंदा है, वो हम व्यक्तिगत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई इस नाम को लेकर कैश करवाना चाहता है, विवेकानंद बहुत कह रहे हैं, तो कैश करवाना बिल्कुल गलत चीज है। हाँ, महापुरुषों के अवतार होते हैं ये कह सकते हैं।
हाँ,
ठीक है बिल्कुल, वो सब
बिल्कुल।
हाँ, वो आखिरी टाइम पर, वही आखिरी टाइम पर जो निकलेगा। देखो आपने वो बही खाता साल भर का किया ना, अकाउंट करते हैं ना, इतना लाभ आज, इतना लाभ, इतना हानि, इतना लाभ, इतना हानि, इतना लाभ, टोटल बैलेंस क्या हुआ, हानि या लाभ, वो कितना है सारे जन्म का, सारे साल का है ना, तो सारे साल का नहीं, सारे जन्म का जो बैलेंस होता है उसमें जो प्रबल संस्कार होता है वो प्रकट हो जाएगा। है नहीं, रुचि तो मन की मर्जी होती है। संस्कार ऐसे है जैसे आपने जो बोले हैं वो रिकॉर्ड हो गया, ग्रामफोन पहले होते ना, रिकॉर्ड हो गया, लाइनें बन गई हैं, और जो सुई लगेगी फिर वही आवाज निकलेगी। रुचि वाली बात नहीं है वहां पर, जो हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर में वो एक प्रकार के जो सोचते हैं ना, जैसे कर्म किया हमने, को वाणी बोली है हमने, कुछ चिंतन किया है, तो चिंतन जो बोलने वाली बात खत्म हो गई, हाथ पैर से कर्म किया खत्म हो गया, लेकिन जिस संस्कार, जिस भाव को लेकर, जिस भाव के लोभ को लेकर, क्रोध को लेकर भाव किया था, वो उनकी लाइनें पड़ जाती हैं सूक्ष्म शरीर में, तो वो साथ जाती है। हाँ, तो लीडिंग जो हो जाए, लीडिंग होता है, पैरलर नहीं होता, बराबर तो कोई भी नहीं होता है। लाभ भी हुआ, हानि भी हुआ, अगर हानि लाभ बैलेंस बनता है कि लाभ ज्यादा की 51 रुपए लाभ हुआ, और नुकसान मान लीजिए थोड़ा कम हुआ, तो लाभ वाला लीड करेगा, नुकसान वाला लीड करेगा। दोनों वो कह रहे, दोनों ही संस्कार होंगे, लेकिन उसमें लीडिंग कौन संस्कार है, पुण्य कर्म है कि पाप कर्म है? होंगे तो दोनों ही, लेकिन दोनों में बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता है। दुनिया में कोई चीज बिल्कुल बराबर होती ही नहीं है, एक कम होगा एक ज्यादा होगा, वो भी साथ जाएगा। नहीं ना, उसके साथ चेन के साथ जो जुड़े हुए हैं वो बाकी के संचित में दबे रह जाते हैं। इसी बात से आखिरी समय का जो संस्कार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं, आखिरी टाइम में भी बहुत कुछ कर सकता है। हाँ करेगा, पहले इस बार वो मृत्यु विज्ञान का लेख पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ लीजिएगा आपको। हाँ, मृत्यु विज्ञान है, मरना सीखो कैसे मरना है। ठीक है, देखने में तो लगता होगा, देखने में ठीक है, देखने में हमारे देखने में नहीं, देखो देखने में वही आता है, मकान आएगा, गाड़ी आएगी, वो आएगी। हाँ तो वो देखने में वही आता है, लेकिन इतने से ही सुख दुख का निर्णय नहीं होता है।
और कई बार ऐसे भी होता है कि कोई बहुत सेवादार है, शारीरिक कष्ट भी है, और
हमने शारीरिक कष्ट एक अलग चैप्टर लिया है, उसकी हमने अलग ढंग से व्याख्या की है। बाकी जो धन मान आदि आदि ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। हाँ तो शारीरिक कष्ट की हमने व्याख्या की है, उसमें मुख्य कारण क्या, हाँ एक बात शायद छूट गई थी, वो हमने कह दिया है वैसे तो, उसमें थोड़ा ईश्वर का विधान भी है, क्योंकि तो शरीर मिल है नहीं, वो योजना मतलब वो नहीं, उसमें सिर्फ ये है जो भी शरीर मिला है वो ईश्वर की प्रकृति योजना के अनुसार, पंच भूतों का बना हुआ शरीर प्राणी के कर्म से नहीं बनता है ना, जो प्राणी के कर्म से नहीं बनता है, पृथ्वी की रचना प्राणी के कर्म से नहीं बनी है, सूर्य चंद्र की गति प्राणी के कर्म से नहीं बनी है, तो जो ऐसी ऐसी ब्रह्मांड में जो कुछ ऐसे ऐसे है उसको जो जिस नियमों के अधीन वो काम कर रहे हैं वो ईश्वर का विधान है। हाँ ये है ना, हमने कहा मनुष्य शरीर का मिलना वो प्राणी ईश्वर के योजना के अनुसार है, उसी के संकल्प से बनता है, लेकिन इसमें जो रोग आदि 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 ये हमारे कर्म के अनुसार हो जाते हैं। लेकिन ये है कि उसमें भी क्योंकि किनके, हाँ 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 भाई, हम देखो ऐसा नहीं कहा, पहले हमें जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। यदि किसी ने धन प्राप्ति के लिए कर्म किया धन मिल जाएगा, लेकिन यदि उसने शरीर की रक्षा के लिए कर्म नहीं किया शरीर रोगी हो जाएगा। यदि किसी ने धन प्राप्ति के लिए गलत कर्म किया तो धन तो मिल जाएगा, लेकिन जो गलत कर्म किया उसके कारण उसके अशांति तनाव डिप्रेशन वो भी मिल जाएगा। तो जैसा कर्म वैसा फल, अभी नहीं समझ में आ रहा, देखो भाई। हाँ हाँ कहाँ अच्छी है भाई, नहीं 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 वो नहीं है, तब वो तो हमने कह दिया है, बिल्कुल कर दिया है, शरीर को बनाने के लिए उन्होंने कर्म किया है।
अब आतंक वाली भी ट्रेनिंग होती है मिलिट्री, हम तो नहीं करते, हम तो पढ़े से बेहतर
रहना, उन्होंने बहुत हार्ड लेवल किया फिजिक को, ये एक्सरसाइज करके ये किया तो शरीर फिट है उनका, ऐसा कर्म अपने नहीं करते हैं। नहीं 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 वो नहीं ना नहीं, देखो नहीं वो बात नहीं है, हमने सारी बातें कह दी, उसको गंभीरता से सोचिएगा, हमने सिर्फ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, यदि शरीर को इग्नोर करेंगे तो शरीर में रोग आएंगे, और ये जहन के पीछे चले हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा विदेशों में अपने लोग क्या करते जाते, सारा दिन रात डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट करते करते शरीर 40 साल की उम्र रोगी हो जाता है। वो पिछले जन्म का हमने कह दिया, पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था अभी। नहीं वो तो चेन है अभी, वो चेन है। इस जन्म में भी जो कर्म करते हैं वो कर्म संस्कारों के अनुसार करते हैं। थोड़ा सा हमने जो कहा है ना, थोड़ा सा उसको आंख बंद करके सोचिएगा। वैसे सारे प्रश्नों का उत्तर तुम दे चुके हैं। हाँ हाँ, आप शुरू में नहीं आए थे। हाँ तो गड़बड़ हो गई ना।
एक ही बात कह रहे अभी सभी के लिए, क्योंकि मौका भी है तकरीबन, जिनसे अभी ये लेक्चर भी रिकॉर्ड किया है, अब इसको वेबसाइट पर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी डालेंगे, ऑडियो भी डालेंगे। अभी तकरीबन कोशिश होती है कि वेबसाइट पर हम जितना ज्यादा से ज्यादा मैटर अपलोड करते रहते हैं। अभी जैसे वो रिसेंटली अपलोड किया था, नाम से चर्चा है अगर कोई पढ़ेगा तो मतलब बराबर ये चीजें आती है, तो बार बार पढ़ने से क्लैरिटी और आ जाती है।
वैसे समस्या सिर्फ यही है कि हम कर्म ये कर देते हैं और फल चाहते हैं, कोई ये कर्म हमने किया नहीं उसका फल। तकरीबन जी
विशाल लास्ट टाइम कितना उस इसी तरह लास्ट टाइम इंग्लैंड गया था, तुम्हारा लड़का ऐसे वैसे ही बहुत करता रहा कि नहीं जी वो तो मेरे नाम से बंदे है, होता मेहनत भी नहीं करते, ना बढ़िया चल रहा है, मैं भी मेहनत करके भर जाना, मैं कुछ करता नहीं, बहुत औखा थी।
हाँ समझ में आता
है,
हमने कह दिया कि अभी बीज डाला हुआ है तो बनेगा, एक भी बना हुआ उसने फसल ही काटनी है। हाँ बस यही बात है ना, पिछला नहीं ना दिखाई देता, पिछला नहीं दिखाई देता, आगे भी नहीं दिखाई देता। अच्छा चलो सर विचार कर लेना, हम वैसे वो कर देंगे सर। हाँ जी चलो, राम राम नहीं तो लगा ले, वैसे आज चर्चा तो काफी लंबी हो गई है।